नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।